ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने ये बार बार कहा, निश्चय बुद्धि है ना, निश्चय के बारे में बार बार बाबा ने कहा। आज निश्चय के आधार से क्या क्या हो सकता है, और निश्चय अगर नहीं है तो क्या क्या हो सकता है। ना केवल बाबा के साथ निश्चय, बाबा पे निश्चय, लेकिन संबंधों में देखते हैं, अगर नॉर्मल अगर कोई जीवन है तो निश्चय कितना महत्वपूर्ण है। आप जरा सोचो, अगर ज्ञानी भी ना हो, अज्ञानता में भी विश्वास, जो निश्चय का दूसरा शब्द होता है विश्वास है ना, फेथ, दूसरों पर विश्वास रखना, स्नेह तो करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रस्ट करना, फेथ रखना, विश्वास रखना, निश्चय करना, तो कितना गहरा है ये, है ना। संबंधों का आधार भी निश्चय है, और फिर बाबा से प्राप्तियों का आधार भी निश्चय है, है ना। तो बाबा ने जब निश्चय के बारे में कहा कि चार बातों में निश्चय होने की जरूरत है, है ना, और चारों ही बातें टेबल के चार खंबे की तरह है, एक भी, एक में भी निश्चय कम हो तो हमारे ब्रह्मण जीवन जो है वो डगमगा सकता है। वो चार बातें कौन सी है जिसपे हमें निश्चय रखनी है? सबसे पहली बात, किस में निश्चय? खुद में निश्चय, खुद में विश्वास। और दूसरी बात है बाप पे निश्चय। एक एक चीज फिर विस्तार में देखेंगे, है ना। और फिर तीसरी बात, ड्रामा में निश्चय। और चौथी बात, ब्राह्मण परिवार में निश्चय। ये चारों ही बातों की आवश्यकता है ब्राह्मण जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सहजता लाने के लिए, पुरुषार्थ में उन्नति, सहज रूप से उन्नति को पाने के लिए हमें इन चार बातों में निश्चय की जरूरत है। निश्चय डगमगाया, बुद्धि डगमगा जाती है, बुद्धि भटक जाती है। निश्चय है तो निश्चिंत बुद्धि एक मतलब स्थिर हो जाता है, जब निश्चय है तो बुद्धि स्थिर हो जाता है। निश्चय थोड़ा डगमगाया, बुद्धि भी भटकना शुरू हो जाता है ना। तो इसलिए सबसे पहली बात है स्वयं में निश्चय है। सभी को स्वयं में निश्चय, आप कौन है? आत्मा है। और आप कौन है? बाबा के बच्चे हैं। आप कौन है? आप कौन है? इतने बड़े बड़े टाइटल बाबा ने दिया है, केवल आत्मा बोलते हो आप लोग। इतने नशे की बातें बाबा ने बताई हुई है, वो नशा कहाँ है? हाँ मैं आत्मा। कहाँ है नशा? कहाँ है खुशी? कौन है आप? पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे, आप कौन है? और बताओ, और बताओ, आप कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान, आप कौन है? विघ्न विनाशक, आप कौन है? नूरे रतन, भगवान के नूरे रतन, आप कौन है? मीठे बच्चे, ठीक है, वो भी ठीक है। और कल्प कल्प के विजयी आत्माएं। आप कौन है? बाप कहते वो हो गया और डबल ताजधारी है। आप कौन है? हो गया, वो पूर्वज का भी हो गया। और कौन है? विश्व राज्य अधिकारी है ना। तो इतने सारे टाइटल्स हैं, जैसे ही हम उसको बोलते हैं तो इतना नशा चढ़ जाता है और आपके चेहरा अभी देखो कितनी खुशी है सब स्माइलिंग है ना। तो बाबा तो बोलते हैं, लेकिन क्या मैंने उसको स्वीकारा है? बाबा वो बोलते हैं आप तो कल्प कल्प के विजयी हो, लेकिन आपने स्वीकारा है चित्त में, जैसे हाँ स्वीकार लिया, जैसे हाँ मैं ही हूं, मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेंगे। तो ये ऐसे स्वीकारना है। कई बार ये होता है कि मुरली सुन रहे हैं, बाबा की मुरली बहुत नशा चढ़ाने वाली होती है कि बाबा तो सबको बोलते हैं ना, मेरे को थोड़ी बोल रहे हैं। ऐसी बात होती है कि मैं तो इस देखो अभी इस जीवन में मैंने बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, बहुत जो करना नहीं चाहिए, जो बोलना नहीं चाहिए वो सब कुछ मैंने किया है जिंदगी में। तो मैंने अपने आप को देख करके फिर बाबा जो टाइटल्स देते हैं, स्वमान देते हैं, उसके बेंट करते तो ऐसा कैसा हो सकता है? वो तो मैं नहीं हूं। एक तरफ बोल रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन फिर गलतियां भी तो की है। कहा मैंने हार बहुत खाई है जीवन में, तो मैं कहा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं? हाँ हाँ, मतलब अंदर बहुत लोगों के मन के अंदर ये द्वंद्व चलता रहता है। बाबा तो ऐसा बोलता है लेकिन फिर अभी मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा बोलते हैं लेकिन कहां स्वीकार करूं। परम पवित्र आत्मा बाबा बोलते हैं कि आप तो परम पवित्र आत्मा हो, देवी आत्मा हो, तो फिर अभी कहां हूं मैं? तो वहां उस फिर स्वयं में संशय होता है कि मैं ना ठीक है, 108 छोड़ो, 16108 भी छोड़ो, तो 33 करोड़ बेबी में आ जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। तो इतने दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो क्यों दिल शिकस्त हो जाते हैं? क्यों 9 लाख में आ जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन उसका लक्ष्य रखना नहीं ना। बाबा हमें राजा बनाने के लिए आए हैं, इसीलिए राजयोग सिखा रहे हैं। राजा बनने के लिए हम राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा बनने के लिए नहीं सीख रहे हैं ना। तो ठीक है, करते करते वो हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य तो राजा महाराजा बनने का लक्ष्य है कि अगर मैं लक्ष्य सिर्फ ये इस रूफ तक पहुंचने का लक्ष्य रखूं तो मैं कोशिश करके करके यहां तक पहुंचूंगी। अगर मेरा लक्ष्य रहेगा आकाश को छूने का, तो एटलीस्ट चलो आकाश को नहीं छूंगी लेकिन एटलीस्ट इस रूफ से तो ऊपर जाऊं। तो इतना ऊंचा लक्ष्य हमारा रखना है। और इस टाइटल, उसके साथ साथ टाइटल को हम स्वीकार कैसे करें? जो भी बाबा स्वमान दे रहे हैं, बाबा किस रूप को देख रहे हैं? वर्तमान को रूप को देख रहे हैं या भविष्य रूप को देख रहे हैं बाबा? बाबा हमारा भविष्य रूप देख रहे हैं, वर्तमान रूप नहीं देख रहे हैं। बाबा यहां बैठे बैठे जब अव्यक्त बाप दादा की मुरली चलती थी, बहुत लोग मिले हुए हैं ना अव्यक्त बाबा से, डायमंड हॉल में हो या ओम शांति भवन में हो, जब बाबा हमको से जब मिल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं आप डबल ताजधारी आत्माएं हो, इतने भाग्यशाली, तो वर्तमान स्थिति को नहीं देख रहे बाबा, भविष्य को देख रहे हैं। और हम आत्माएं जब परम धाम में थे कैसे थे? आप जब परम धाम में थे आप कैसे थे? परफेक्ट, परफेक्ट, उसमें कोई भी त्रुटियां नहीं थी, है ना। जब हम परम धाम में थे हम मास्टर सर्वशक्तिमान थे, संपूर्ण पवित्र थे, 16 कला संपूर्ण, वो सब कलाएं सारे फिर सत्युग में आएगा, जो संपूर्ण स्थिति है परम धाम में एकदम परफेक्ट, कोई भी कमी कमजोरियां नहीं है ना। तो अभी हमें वो स्वरूप को इमर्ज करना है। पहले अभी मेरे पास इतने सारी कमियां हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचना है ना। कौन से स्वरूप को इमर्ज करना है? परम धाम में जो मेरी स्थिति थी, और वहां तक पहुंचना है ना, हमारा लक्ष्य वो है ना। जो पीछे जो बीत गया उसके बारे में हमें सोचना नहीं है, हमें देखना नहीं है, जहां पहुंचना है। जब हमें रनिंग रेस करना होता है तो हम पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, फिनिशिंग पॉइंट को देख रहे हैं, कितना दूर है ना। तो फिनिशिंग पॉइंट के ऊपर हमारा पूरा लक्ष्य रहता है, पूरा दृष्टि, पूरा फोकस हमारे फिनिशिंग लाइन पर रहता है। ऐसे ही हमारा जो लक्ष्य है इस संगम युग में वो संपूर्ण स्थिति पहुंचना है ना। तो वो संस्कार आत्मा में है, मर्ज रूप में शायद हो, लेकिन अभी इमर्ज करना है। और इमर्ज कैसे करेंगे? इमर्ज कैसे करेंगे? बाबा जो सुना रहे हैं उसको स्वीकारने से। हाँ, मैं सचमुच आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सचमुच मैं आत्मा परम पवित्र हूं, संपूर्ण स्थिति में है ना। जब उसको स्वीकारने लगते हैं, फिर धीरे 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 खुद में निश्चय बढ़ता है, हाँ मैं हूं कुछ है ना। लेकिन उसका उल्टा भी होता है कभी कभी। उल्टा नशा कब चढ़ता है? उल्टा नशा में तो बहुत कुछ हो। उल्टा नशा कहाँ चढ़ता है, कब चढ़ता है? देह भान, आत्मिक स्थिति का जो स्वमान होता है वो अभिमान नहीं है, स्वमान है। लेकिन देह भान माना कोई भी विशेषता, मैं अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं ये सेवा अच्छा कर सकती हूँ, दूसरों किससे अच्छा कर सकती हूँ, तो कंपैरिजन जो हो जाता है ना, मैं अच्छी हूँ वो अच्छे नहीं है, उनसे मैं अच्छी हूँ, ये भान जो आ जाता है ना वो देह भान है। स्वमान में क्या होगा? मैं भी अच्छी हूँ वो भी अच्छे हैं, है ना। क्योंकि आत्मिक रूप में सभी अच्छे हैं, सितारे है ना, स्टार्स हैं, तो सभी अच्छे हैं। तो वहां अभिमान नहीं है, स्वमान है, और दूसरों को भी हम सम्मान दे रहे हैं है ना, और दूसरों को भी फरिश्ते रूप में देख रहे हैं, बहुत ही ऊंचे दृष्टि से हम दूसरों को भी देख रहे हैं, और स्वयं को भी इतने ऊंचे नजर से देख रहे हैं। ये है समान, और ये तब होगा जब हम हमारे खुद में वो निश्चय है कि सचमुच मैं सत्य की आत्मा हूं, बाबा के उम्मीदों को पूर्ण करने वाले आत्मा हूं। तो वो निश्चय जब होगा ना, फिर कभी भी ये प्रश्न नहीं उठेगा क्या मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतना ताकत नहीं है, नहीं हो सकता है, केवल वो जब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, जब दादियां कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, है ना। उनमें और हमारे में क्यों अंतर है? क्योंकि निश्चय में अंतर है ना। दादियों ने एक झट से बलिहार हो गए, तो वो उनमें और वही अंतर है ना। तो मैं भी उन अपना निश्चय इतना करो, दृढ़ करो, तो ताकि मैं भी कर सकती हूँ। जब दादियां कर सकते हैं, मम्मा कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, वो करके दिखाया है तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना। तो इसलिए स्वयं में निश्चय फाउंडेशन है हमारे ब्राह्मण जीवन का। और दूसरी बात है बाबा में निश्चय, है ना। तो कई बार बाबा में विश्वास होता है लेकिन खुद में विश्वास नहीं होता। खुद में जितना विश्वास बढ़ता जाएगा, निश्चय बढ़ता जाएगा, तो फिर बाबा में भी विश्वास बढ़ता जाएगा। और बाबा कई बार होता है कि हाँ बाबा आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं, भगवान ज्ञान दे रहे हैं, ये सब कुछ ठीक है। मुरली जब सुना रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं, भगवान सुना रहे हैं, शिव बाबा सुना रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन कई बार ये संशय इस बात में क्यों ये आ जाता है कि सचमुच क्या बाबा मुझे मदद करता है, ऐसा है, कोई संशय आता है? सिर्फ दीदियों की मदद करता है, सिर्फ महारथी बच्चों को मदद करता है, कि क्या मुझे भी मदद करता है बाबा, ये प्रश्न उठता है। हमेशा करता है बाबा, करता है हमेशा, हाँ हर छोटी बात में बाबा करते हैं ना मदद। तो या कभी संशय उठता है कि बाबा हो जाता है ना, अपने आप हो जाता है, ऐसा अनुभव है ना। लेकिन कि कुछ लोगों को ये संशय उठता है, ऐसा कोई है जो उनके संशय उठता है? कोई बात नहीं, ऑनेस्टी से बता सकते, कोई बात नहीं, आपका जो प्रश्न है उसको सोल्यूशन दे देंगे। किसी को है कि ऐसे कभी कभी संशय होता है, बाबा मैं तो इतना पुरुषार्थ करती हूँ, इतना कुछ मेहनत करती हूँ, फिर भी मुझे मदद नहीं करता है बाबा, ये समस्याओं का हल नहीं मिल रहा है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये है, वो है, है कुछ ऐसे? है तो सही, कोई बोल नहीं रहे ये अभी अपना ही परिवार है, होता है ना। खत्म हो जाता है ना। हाँ ये ड्रामा है, तो वो भी है। और कई बार थोड़ा बहुत ये भी होता है कि बाबा क्यों नहीं मदद कर रहा है मुझे, ये परेशानी है, इस परिस्थिति को उसे ऊपर उभरने के लिए बाबा क्यों नहीं मदद कर रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ है ना। तो बाबा तो है ही, ऐसा नहीं समझना है कि बाबा मेरे साथ नहीं है। जब भी ऐसा लगता है ना कि बाबा क्यों मदद नहीं कर रहा है, तो ये ऐसा कभी नहीं है कि बाबा मदद नहीं कर रहा है। बाबा तो गाइड है, हमारा तो गाइडेंस तो कर ही रहे हैं, रास्ता तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन फिर अपना भी कुछ हिसाब किताब होता है। तो उस अनुसार जो बाबा ने गाइड किया हुआ है, बाबा के श्रीमत पर जब हम चल रहे होते हैं, तो हिसाब किताब चुकते होते होते वो क्लियर होगा। अच्छा, कभी कभी मदद जल्दी हो जाती है ना। जब बाबा को बहुत प्यार आ जाता है ना बच्चे पर, तो बहुत जल्दी मदद मिल जाती है। कभी कभी देरी भी हो जाता है, लेकिन फिर वो संशय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धीरज धरने की जरूरत है ना। धीरज की भी परीक्षा होगी, जब मटका मजबूत है कि नहीं है, उसको ठोक ठोक करके ही वो मजबूती वो दिख ये चेक करते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कभी कभी चेक भी करते हैं आपके, आप में निश्चय कितना है बाबा में। तो परीक्षा के बिना हम पास नहीं हो सकते हैं ना, परीक्षा में फेल है तो फिर नेक्स्ट कक्षा में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे परिस्थितियां टेस्ट के रूप में, टेस्ट पेपर के रूप में हमारे सामने आती है, तो ये चेक करने के लिए बाबा भेजते हैं कि इस बच्चे में निश्चय कितना है। आपने ये कहानी सुनी होगी ना, तो बाबा दादियों को भी टेस्ट करते थे, निराकार बाबा, आलमाइटी बाबा दादियों को भी चेक करते थे कि इनमें, इन बच्चों में निश्चय कितना है। निर्मल शांता दादी के बारे में सब जानते हैं, निर्मल शांता दादी ब्रह्मा बाबा के लौकिक बेटी, कलकत्ता में रहते थे, लेकिन उसके पहले वो या सभी जब यहाँ आए ना माउंट आबू, कराची से सब या माउंट आबू आए, माउंट आबू में तो बहुत ठंड और कराची तो वो सागर किनारा एकदम वहां गर्मी, तो यहाँ जब आए तो कुछ लोगों को कुछ अस्थमा था, तो दादी को भी, निर्मल शांता दादी को भी अस्थमा था, और ठंड में अस्थमा वालों के लिए ठीक नहीं है, है ना। तो लेकिन अस्थमा था तो बाबा ने एक बार प्रोग्राम दिया एक संदेशी के द्वारा, एक संदेशी संदेश लेके आई कि बाबा ने ये कहा है कि निर्मल शांता बच्ची को, है ना, और वो भी दिसंबर मास ठंड के दिन, अभी भी इतना ठंड है ना, तो उस उन दिनों में ज्यादा ठंड होता था, आजकल तो बिल्कुल नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से कम हो गया है, उन दिनों में बहुत ठंड पड़ती थी यहाँ, तो ठंड के दिनों में ये संदेश आया बाबा से कि निर्मल शांता बच्ची को, है ना, बाथरूम में ले जा करके ठंडे पानी से नहलवाओ, और बच्ची को अस्थमा है निर्मल शांता दादी को अभी एकदम, बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा भी तो एकदम थोड़ा से हिल गए थोड़ा, क्योंकि उनकी लौकिक बच्ची है ना, वो जो भी है, लेकिन बाबा जवाबदार है, ब्रह्मा बाबा, लेकिन फिर भी अलमैटी बाबा का, अलमैटी बाबा वो निराकार बाबा है ना, शिव बाबा, तो उन दिनों में अलमैटी बाबा कहते थे उनको, तो अलमैटी बाबा ने बोला हुआ है तो अभी कुछ नहीं कर सकते, ले जाओ। तो जब निर्मल शांता दादी को बोला तो दादी ने बोला ठीक है, जब बाबा ने बोला है, मैंने अपनी जिंदगी बाबा को दिया हुआ है, अगर मैं शरीर भी छोड़ दूं तो बाबा जवाबदार है। हम में से कितने ऐसे हैं, हम में से कितने ऐसे हैं ये कहे कि बाबा जवाबदार है। तो वो ठीक है, बाबा जवाबदार है जाकर के, फिर वहां बाथरूम, वो संदेशी को ही बोला था कि ले जाओ बाथरूम में, बाबा ने ये भी संदेश दिया था कि आपको ले जाना है निर्मल शांता बच्ची को बाथरूम में बिठा करके, फिर ठंडे पानी का लोटा सिर पे डालना है। तो जब दादी को बिठा करके कपड़े वपड़े सारा उतार करके बिठाया और फिर पानी डालने के लिए, उन दिनों में तो वो नल नहीं होता था ना, पानी भर के ले आते थे, फिर बाल्टी से वो लोटे से लगाते थे, तो बाल्टी भर के रखा और लोटे से फिर डालने के लिए निकाला पानी, फिर बाबा ने उस बच्ची को खींच लिया फिर से ट्रांस में, ट्रांस में गए फिर वो जो संदेशी दादी, जो दादी थे वहां संदेशी, तो फिर ट्रांस में खींच लिया बाबा ने, और बाबा ने ये बोला कि बच्ची है ना इस टेस्ट में पास है। तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए बाबा ने ये पेपर लाए, तो बच्ची 100% से पास है। तो उन दिनों में तो बाबा के प्रोग्राम से ये सारा होता था, लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार परिस्थितियां आती हैं, है ना, और ये जरूरी नहीं, मना ये नहीं है कि हाँ संदेश बाबा ने, ये भी, ये जो भी परिस्थितियां आती है बाबा ने भेजा हुआ है ये परिस्थिति हम बच्चों को टेस्ट करने के लिए कि ये बच्चे कितने पास हो सकते हैं, है ना। इन टेस्ट पेपर्स को जितना हम पास करते जाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे, है ना। जो निश्चय, ये परिस्थिति आई बाबा जवाबदार है, बाबा पर अगर पूरा निश्चय है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कई बार ये होता है कि श्रीमत एक कहता है, लेकिन फिर लगता है कि ये श्रीमत अनुसार मैं चलूं तो फिर शायद इन लोगों को मैं नाराज कर लूं, तो इसलिए वहां हम थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं और श्रीमत को छोड़ करके उन आत्माओं को खुश करने लगते हैं, फिर कहां पहुंचते हैं, उन आत्माओं को हम संतुष्ट कर पाते हैं, हा? नहीं। बाबा ने कहीं मुरलियों में कहा कि कि अगर सुख देना है श्रीमत को छोड़ करके अगर आप सुख देते हो वो दुख में गिना जाएगा, सुख में नहीं गिना जाएगा। श्रीमत के अनुसार चल करके जब हम किसी को सुख देते हैं वो सुख में गिना जाएगा, है ना। कई बाबा को क्या पता है, बाबा को थोड़ी पता है हमारी जिंदगी, वो तो निराकार परम धाम में बैठे हुए हैं, तो हमारी जिंदगी क्या है वो आकर के तो देखे, है ना। कई बार बहनों को भी बोलते हैं, बहन जी आपको क्या पता है परिवारों में क्या चलता है, आप तो सेंटर में बैठे हैं, आपको तो पता ही नहीं है, है ना। तो ये अनिश्चित निश्चय नहीं है, बाबा के श्रीमत पर बाबा के ज्ञान में निश्चय ना होने के कारण से फिर कहते हैं बाबा इतना जो ज्ञान दे रहे हैं केवल समर्पित भाई बहनों के लिए ज्ञान नहीं है ना, सभी भाई बहनों के लिए, सभी आत्माओं के लिए ये ज्ञान है, परिवार में जो रहते हैं तो उनके लिए भी तो ये ज्ञान है। लेकिन जितना हम बाबा पर निश्चय रख करके बाबा के श्रीमत पर चलते चलेंगे तो फिर आप देखेंगे आपका परिवार भी कितना सुखमय हो सकता है। तो इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। और तीसरी बात, किसमें विश्वास? ड्रामा में विश्वास। विश्वास है ड्रामा में, हा? कभी टूट जाता है, कोरोना क्यों आया, मुझे ही क्यों आया। तो ठीक है, बाबा ने तो बोल के रखा है विनाश होगा, अलग अलग रीति से परिस्थितियां आएंगी तो विनाश तो होगा। कई बार ये होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो मैं इतना पुरुषार्थ करती हूँ, इतना मैं इस जीवन में तो मैंने कुछ किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला, मेरा पार्ट ऐसा क्यों है। तो अगर प्रश्न उठा, माना ड्रामा में निश्चय नहीं है। आप लोगों में कितने ऐसे हैं जो ये कहे मैं अपने पार्ट से इस अभिभ्रमण जीवन में अभी जो पार्ट मिला हुआ है, इस जन्म में जो पार्ट मिला हुआ है 100% मैं इस पार्ट से खुश हूं। या फिर ऐसे कोई है कहेंगे कि ठीक है 90% ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, मेरे परिवार में ना ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए था, मेरे पड़ोसी में ना ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए था, मेरे जो जहां काम करते हैं तो ये बॉस ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कोई है? 100% जो है पार्ट, और आपके जीवन में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सहित आपको स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। या फिर कहें कि ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए था, ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए था, तो सब कुछ ठीक है, इस कारण से नहीं, इस व्यक्ति के कारण से मैं दुखी हूं थोड़ा बहुत, नहीं तो परफेक्ट होता था। करना ही पड़ेगा अलग बात है, खुशी खुशी से स्वीकार करना। है ना। हाँ, इसीलिए हर व्यक्ति सहित हमें जब स्वीकार है तब हम कहेंगे ड्रामा में निश्चय। फिर किसी को बोलो, जब बाबा बोलते हैं ना ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, 5000 वर्ष वो जैसा चला था वैसे ही रिकॉर्डेड, एक मिनट भी इधर उधर नहीं, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं, अगर मक्खी यहां उड़ी तो मक्खी फिर से उड़ेगी, बाबा ने कई मूल्यों में कहा है। इस बात को सुन करके कहीं भाई बहने हताश हो जाते, निराश हो जाते, बहन जी फिर से ऐसा होगा, फिर से इन चीजों से गुजरना पड़ेगा, फिर वही परिस्थितियां आएंगी, फिर इन लोगों से झगड़ना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये व्यक्ति मेरे जिंदगी से दूर हो जाएंगे, फिर उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, इतना दुख होगा, फिर से रिपीट होगा। तो ये सोच सोच करके बहुत निराश होते हैं। वो सहित हमें स्वीकार करना है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। हर सीन में, ड्रामा के हर सीन में कल्याण छिपा हुआ है। अगर मैं जा रही हूं, मैं गिर जाऊं, उसमें भी कल्याण है। अगर कुछ जा रही हूं, एक्सीडेंट भी हो जाता है, उसमें भी कल्याण है। अगर जो अनहोनी हो जाता है, उसमें भी कल्याण है। जब हम ज्ञान की चर्चा कर रहे होते हैं, तो फिर ठीक है, ड्रामा के पॉइंट आता है, ड्रामा कल्याणकारी है। लेकिन परिस्थितियां जब आती है तो ये बार बार याद रखना है, ड्रामा कल्याणकारी है। कोरोना के टाइम पे अनेक बहुत सारे लोगों का अकाल मृत्यु हो गया, अचानक हो गया, दो दिनों में बढ़ गया और शरीर छोड़ दिया, ये भी कल्याण। मतलब हर बात में कल्याण है। ये इतना फिट हो जाए ना, बात बुद्धि में इतना फिट हो जाए कि हर बात में कल्याण है, ये भी जो मैं सोच रही हूं, जैसा मैं चाहती हूं वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें भी कल्याण है। उसका व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है, उसमें भी कल्याण है। उस व्यक्ति से मैं परेशान हूं, उसमें भी कल्याण है। हाँ, मृत्यु। हाँ, तो मैंने स्वीकारना उस बात को, क्योंकि यहां बैठ करके ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है ठीक है, ज्ञान है, लेकिन परिस्थितियों से जब गुजर रहे होते हैं, ये इतना फिट कर ले बुद्धि में कि हर सीन में कल्याण है। अब कभी भी ड्रामा का सीन अकल्याण नहीं हो सकता, है ना। तो इतना पक्का हो जाना चाहिए। तो प्रैक्टिकल एक घटना जो मेरे सामने घटी थी, तो वो इससे मेरा इतना पक्का हो गया था कि शांतिवन जब नया नया चल बना ना, जब ज्ञान सरोवर बना, तो बाबा आकर के देखा कि ये तो ज्ञान सरोवर, ये तो हॉल बहुत छोटा है। बाबा ने कहा कि फिर क्योंकि जब ओम शांति भवन के बाद यह ज्ञान सरोवर जब बन रहा था, तो ज्यादा जगह नहीं था ना, जो ऊपर नीचे है, तो जितना हो सका यही हॉल बना। तो बाबा आए 95 में 18 जनवरी को हमनी हॉल में, बाबा आकर के देखा, तो फिर बच्चों को बाबा ने बोला, ये तो छोटा है, मेरे बच्चे तो बहुत सारे आने वाले हैं, तो इसके लिए छोटा होगा। तो फिर शांतिवन फिर नीचे गए, क्यों नीचे ही शांतिवन के मतलब अबरोड में ही ये इतना बड़ा हो सकता है ना, ऊपर कहीं भी नहीं हो सकता इतना बड़ा। तो धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया शांतिवन, तो डायमंड हॉल बना, सब बना। तो दादियों ने कहा कि बड़ी बहनों से कि कोई आकर के यहाँ रहे शांतिवन में थोड़ा सारा पालना देने के लिए। तो एक बहन आकर के बोला कि ठीक है दादी, मैं आती हूँ यहाँ करने के लिए। तो फिर वो रहे, कुछ महीने रहे, 5 महीने 6 महीने रहे, 6 महीने अच्छी तरह पालना दिया शांतिवन में सभी भाई बहनों को, और सब कुछ हुआ, और कुछ घटनाएं घटी ऐसे। फिर बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी ने ये डिसीशन लिया कि नहीं, अब फिर वापस जाओ, यहाँ रहने की जरूरत, कुछ कारण था दादी। तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो बहन जी आए थे, सब सुन इंचार्ज बहन थी, बड़ी बहन, सब मना सभी ने, जब वो बहन यहाँ आए तो धूमधाम से सभी भाई बहने विदाई दी, आप जाओ मधुबन जाओ, आप निश्चिंत रहो, हम संभालेंगे अपना सब जोन, सारा कुछ ये करके भेजे थे। फिर अभी 6 महीने के बाद वापस जब दादी ने कहा कि नहीं आप वापस जाओ, तो बहन जी को तो बहुत धक्का लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हूँ फिर वापस जाऊँ वहाँ कि भाई बहनों के वहाँ। तो वो फिर भी जब बड़ी दादी का माना, प्रकाशमणि दादी का कहना माना बाबा का कहना, है ना, निमित्त का कहना माना बाबा का कहना, तो ठीक है, वो बहुत डिस्टर्ब थी बहन, तो फिर भी कि जाना है तो गए। तो जाने के बाद फिर तुरंत कुछ ऐसे घटनाएं वहां सब जोन में घटी जो केवल ये बहन जी ही संभाल सकते थे, कोई और उन घटनाओं को उन परिस्थितियों को संभाल नहीं सकते थे, वही बहन संभाल सकते थे। तो इसीलिए ड्रामा अनुसार कारण कुछ भी बने, लेकिन जो हुआ उस समय लगता था कि ये तो अकल्याण हुआ, ये तो गलत हुआ, ये डिसीजन गलत थी दादी की, तो ये लेकिन ड्रामा में वो कल्याणकारी था, क्योंकि वहां उस जगह पर उस समय उस बहन जी की आवश्यकता थी, है ना। तो वो इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ब्रह्मा बाबा की अगर कोई कुछ ऐसे डायरेक्शन भी दे दे, अगर गलत हो भी जाए, लेकिन वो बाबा ने जवाबदार है, उसको ठीक कर देंगे, है ना। केवल ये ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी निमित्त, जो भी निमित्त है, आपको लगता है कि इनका डिसीजन है ना गलत है, लेकिन ड्रामा में कौन सा राज है वो किसी को भी पता नहीं है, जिस कारण से ऐसा हो रहा है और एक्यूरेट हो रहा है, सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है। बाबा कहते हैं ना, एक तो कल्याणकारी है और दूसरा है एक्यूरेट, सही हो रहा है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है, ये हमें स्वीकारना है। ब्राह्मण जीवन में कभी लगता है कि मेरा साधना ठीक नहीं हो रहा है, ये ऐसा है ना, ये ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, ये सही नहीं हो रहा है, नहीं, जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है। जब वो स्वीकार लेंगे ना, बहुत बातों से हम निश्चित हो जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे प्रश्न ये उलझन में पड़े रहते हैं, बहुत सारा नेगेटिव आता है मन में, विचार आते, ये ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वैसा क्यों हो रहा है, तो ये नहीं, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है ना। तो ये बातें हमें ये स्वीकारने की जरूरत है, जितना हमें ड्रामा में निश्चय है उतना हम निश्चिंत रह सकते हैं, है ना। और चौथी बात, ब्राह्मण परिवार में निश्चय सबसे मुश्किल है, सब में नहीं, सबसे मुश्किल है ये ब्राह्मण परिवार में निश्चय। कई बार लगता है बाहर लौकिक वाले बहुत अच्छे हैं, है ना, कभी कभी ऐसा लगता है ब्राह्मणों से लौकिक वाले बहुत बड़े अच्छे हैं, इनका एटलीस्ट थोड़ा सा मैनर्स है, थोड़ा बहुत थोड़ा, है ना, लगता है ना, कि हर बार नहीं लगता है, कभी कभी लगता है कि ये कैसा है, ये ब्राह्मण ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। नहीं, भले ऐसा है लेकिन बाबा ने चुना है ना, जब बाबा ने उनको चूज किया है, जब बाबा ने उनको चुना है, मैं कौन होती हूं उनको नकारने वाली, उनको रिजेक्ट करने वाली मैं कौन होती हूं, है ना। तो इसलिए बाबा के चॉइस है, और यही आत्माएं फिर पूरे कल्प में साथ आने वाली हैं, है ना। तो भले वो उनका व्यवहार ऊपर से ऐसा हो सकता है, लेकिन आत्मा में जो निश्चय है या बाबा में उनको जो ज्ञान है, उन्होंने स्वीकारा है बाबा को, तो उनको उसको देख करके हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है, है ना। तो वो भले वो आत्मा वो व्यक्ति कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हम अपना दृष्टिकोण न बदले, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा श्रेष्ठ दृष्टिकोण उस आत्माओं के प्रति जब हम रखते हैं तो देखते हैं कि भले दूसरों के साथ व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन मेरे साथ उस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी भावनाएं उन आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ है, मेरे दृष्टिकोण उन आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ है, तो मेरे साथ व्यवहार अच्छा ही रहेगा ना, क्योंकि मैं जैसे सोचती हूँ वैसे वाइब्रेशंस होते हैं और वही वाइब्रेशन उन आत्माओं तक पहुंचती है, तो इसीलिए श्रेष्ठ दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी, स्वर्ग क्यों नहीं आ रहा है अभी तक, स्वर्ग की स्थापना क्यों नहीं हो रही है, अब तक श्रेष्ठ नहीं बने हैं, संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट है, लेकिन हम पुरुषार्थ किए बिना हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाए ये इंतजार करते रहे। हाँ अभी ना 10:55 हुआ है, 11 बजते ही वो सत्युग आएगा, ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, अपने तुम में तो परिवर्तन करना लाना पड़ेगा ना, तो कौन सी ऐसी बात है जो अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। और बाबा ने ये बात कही है कि स्वर्ग उस समय आएगा, संस्कार परिवर्तन, और संस्कार परिवर्तन कर लेंगे संपूर्ण बन जाएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात बाबा ने कही है, सत्युग तब आएगा जब हर ब्राह्मण एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना से देखेंगे। सही है, सही है कि जब नए नए आते हैं ना तो बहुत नशा चढ़ा रहता है, हर एक को देख करके लगता है कि बाप रे ये इतने अच्छे योगी है, वो इतने अच्छे पुरुषार्थी है, ये इतने, मैं तो अभी अभी आई हूँ, इतना गैलप करना पड़ेगा, इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इनको देख करके बहुत प्रेरणा, सभी को देख करके बहुत प्रेरणा ले रहे होते हैं कि इनसे ये लो, ये सीखो, वो सीखो। और 6 महीने के बाद क्या हो जाता है, 6 महीना 1 साल रोज रोज ब्राह्मणों से मिल रहे हैं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, फिर उनकी कमी कमजोरियों को देखने लगते हैं, फिर देखते बाप रे ये तो 20 साल से ज्ञान में है फिर भी ऐसा है, फिर भी गुस्सा करते हैं, ये तो 25 साल से ज्ञान में है फिर भी झूठ बोलते हैं, फिर भी ये हो मतलब ये सारे कमी कमजोरियां है ना नजर आने लगते हैं व्यवहार में। जब उनके अंदर भले 90 विशेषताएं हैं, 95% विशेषताएं, थोड़ा बहुत एक अभी तो सभी संपूर्ण तो हुए नहीं ना, तो पुरुषार्थी है सभी, थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 95% जो अच्छाई है उसको छोड़ते हैं और फिर वो जो एक जो गलती है ना उसको पकड़ करके रखते हैं कि इसमें ना ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है, तो फिर थोड़ा लगने लगता है कि ये क्या है, ये ब्राह्मण है या बाबा के बच्चे हैं, ये है वो, थोड़ा बहुत संशय वहां शुरू होता है, शुरू होना शुरू होता है ना। तो इसीलिए हर आत्मा को किस रूप में देखना है, आत्मा के रूप में और उनके संपूर्ण रूप में, यही आत्माएं हैं जो होवनहार देवी देवताएं हैं, है ना, ये सच है कि नहीं है, ये सच है ना, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि भले इस जन्म में हम साधारण रूप में बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है ना, नेग्लेक्ट कर लेना है उसको, देखा अनदेखा कर लेना है छोटी मोटी, अगर हाँ अगर जाकर के उनको बताने की हिम्मत रखते हैं प्यार से, अगर उस पोजीशन में है तो फिर ठीक है, थोड़ा प्यार से बता दिया, बहन जी आपने ये जो बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे दुख हुआ, मुझे ठीक नहीं लगा, तो ठीक है, मतलब परिवार है, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना है, ठीक है, बातें करें तो ठीक है, अगर नहीं के बोल पाए तो देखा अनदेखा कर देना है, उसको इग्नोर कर देना है, परिवार है। जब हम इसको परिवार मानेंगे ना, संस्था नहीं, बाबा इसलिए बार बार क्या कहते, आप सभी भाई बहने हो, है ना, आत्मा के रूप में हम सभी भाई हैं, शरीर के रूप में हम भाई बहन हैं। जब भाई बहन के झगड़ा होती है, भाई भाइयों के बीच जब जब झगड़ा होते सुलह हो जाता है ना, ठीक है थोड़ा बहुत हो गया सुना ना, थोड़ा बहुत बोल लिया कर दे, फिर ठीक हो जाता है, क्योंकि परिवार है, फिर कहाँ जाएंगे, फिर एक ही खून है ना, क्या करे, कोई बात नहीं, फिर भूल जाते हैं। आजकल की बात अलग है, प्रॉपर्टी की बात लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन अगर अपनापन है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े भी हो गए, थोड़ा अनबन भी हो गया, फिर वहां ठीक हो जाता है, क्योंकि अपनापन है, तो वो परिवार का फीलिंग। बाबा इसलिए बार बार क्यों कहते हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारा अलौकिक परिवार है, सभी आपस में भाई बहन हैं। जब वो परिवार का फीलिंग आ जाता है ना, ये गलती भी मेरी गलती है ना। जब अगर अपने परिवार के में कोई कुछ ऐसा होता है तो हम छिपाने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, अब उसको समाने की कोशिश करते हैं। अगर वही पड़ोसी के घर में कुछ हो जाता है तो उसको और बढ़ाने की कोशिश कर दो, आपको पता है, बुला बुला करके बताएंगे, आपको पता है उसके घर में क्या हुआ, पता है ये हुआ, लेकिन वही बात अपने घर में हो जाए तो उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, समाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही ये हमारा परिवार है, हमें समा के चलने की जरूरत है, एडजस्ट होकर के चलने की जरूरत है। कुछ साल, अभी 5-6 साल पहले की बात है, अभी बाबा वहां डायमंड हॉल में आते थे, तो एक वीआईपी बीके थे, तो बहुत डिस्टर्ब थे, सेंटर का कुछ वातावरण ऐसा हुआ था, दो बहनों के बीच में, समर्पित बहनों के बीच में, जो बड़ी बहन है और उनके नेक्स्ट जो बहन है, तो उनके बीच में थोड़ा अनबन हो गया था, थोड़ा ज्यादा हो गया था अनबन। तो वो वीआईपी बीके जो आईएएस ऑफिसर थे, तो वो ज्ञान में नए नए चलने शुरू हुए किए थे, 2-3 साल ही हुए थे, तो लेकिन बाबा बट पक्के बच्चे, रोज मुरली सुनते थे, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, यहाँ भी ऐसा होता है, यहाँ भी ये होता है, तो थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन बाबा में पूरा निश्चय। तो बाबा जब आए डायमंड हॉल में, तो यूजली हो जाते हैं वीआईपी बाबा सर पर्सनल मुलाकात करने के लिए, तो उनको भी लेके गए बाबा से मिलाने के लिए, तो बाबा ने दृष्टि, प्यार से दृष्टि दी, और बाबा ने कहा, बाबा को तो अब जानी जानन हार है, भले बाबा कहे कि मैं जानी जानन हार नहीं हूं, तो बाबा तो हर बात को जानते हैं, वो ज्ञान का सागर है, तो दृष्टि दी और प्यार से बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा परिवार है ना, परिवार समझोगे तो सब उलझन खत्म हो जाएगी, है ना। तो उस बात से वो आत्मा इतने संतुष्ट हो गई, तो ठीक है ना, ये भी मेरा परिवार है, तो अनबन होता रहेगा, ये होता रहेगा, ठीक है, संस्कारों का टकराव होगा, यहां भी तो होता है तो, लेकिन परिवार है। फिर भी वो सब कुछ होते हुए भी हमें उनके प्रति रेस्पेक्ट कम नहीं करना है, जो बड़े हैं उनके प्रति हमें रेस्पेक्ट कम करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो त्याग तपस्या किया है, उन्होंने जो सेवाएं की है, तो उनके उसके लिए हमें रेस्पेक्ट जरूर रखना है ना। तो वो जब बाबा ने वो स्पष्ट किया उस आत्मा को, तो फिर संतुष्ट हो गया, और फिर भाई बहनों ने, मतलब दूसरे टीचर बहनों ने भी उनको अच्छा समझाया, फिर वो निश्चिंत हो गए, फिर वो पक्के बन गए, और ही पक्के बन गए ज्ञान के इसमें, तो इसलिए ये जो भी बातें होती है अपना समझ करके समा के चलते हैं, परिवार में विश्वास रखते हैं, निश्चय रखते हैं, तो फिर सब बातें सहज हो जाता है ना। तो इसलिए परिवार में, ब्राह्मण परिवार में निश्चय रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो सन्यासी नहीं है ना, छोड़ करके अकेले तो नहीं रह सकते, इंसान है और संगठन का बल है। बाबा भी हमेशा संगठन का बल, संगठन के बल के बारे में बताते, इकट्ठा जब एक दूसरे कुछ परेशानियां होती थी एक दूसरे की मदद करते है ना, तो एक दूसरे की मदद से ही हम आगे बढ़ते। ठीक है, बाबा से मदद लेनी है, कुछ आत्माएं ऐसे नहीं होते तो डायरेक्ट बाबा से ये सहयोग नहीं ले सकते, एक दूसरे की मदद करके हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारा परिवार है ना। छोटे से परिवार से अभी इतना बड़ा परिवार, पूरा विश्व हमारा परिवार हो गया। तो ये जब नशा रहेगा ना, जैसे हम जाते कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बाबा के घर में जाकर के क्या बोलेंगे, अपना घर है ना, ये अपना ही घर लगता है। कहीं भी बाबा के घर में जाएंगे अपना घर लगता है। क्यों अपना घर लगता है, कि अपना ही परिवार है। केवल ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से वो महसूस करना है, कोई भी भाई बहनों की परेशानी मेरी परेशानी है ना। तो ये जब हम समझ के चलते हैं तो बहुत प्यार बढ़ता है एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है, और फिर वही फिर संस्कार दैवी राजधानी में वह इमर्ज होता है ना। तो ये चारों ही प्रकार का निश्चय जो है वो पक्का करना है, ये फाउंडेशन है हमारे लिए संगम युग के ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए, है ना। हाँ जी, अभी पूरा नहीं हुआ है ये पूरा नहीं हुआ है हाँ, अभी थोड़े समय के लिए अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, हाँ प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि संतोष दीदी 11:30 बजे आएंगे, है ना। तो थोड़ा समय अभी हम प्रश्न उत्तर कर सकते, कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। संजय भाई माइक मिल सकता है, हाँ जी, कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे, हाँ जी, वहां से भी जोर से बोलेंगे या आगे आना चाहेंगे, यहीं से बोलेंगे, ठीक है बोलिए। क्योंकि आत्मनिर्भर भले छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर उनका शायद कर्मों का हिसाब ऐसा है, और शायद कुछ ना कुछ क्योंकि तुरंत कहीं बार हमें वो कल्याण दिखाई नहीं देता है, आगे चल करके एक दो साल में या आगे चल करके वो कल्याण समझ में आता है या दिखाई देता है, इमीडिएटली कभी नहीं समझ में आता है, आगे चल करके कहीं बार समझ में आता है। जैसे वो उस बहन जी का भी बात मैंने कहा कि मैंने एक दो महीने के बाद समझ में आया कि उस बहन जी का फिर वापस आना कितना कल्याणकारी था। तो ऐसे तो हर बात में कहीं ना कहीं कल्याण है, कभी कभी तुरंत दिखाई देता है, कभी कभी बहुत बाद में वो बात दिखाई देता है, और कहीं वो कल्याण कभी हो सकता है, कभी ये भी होता है कि हिसाब किताब भी तो है उसको और एक्यूरेट है। चलो कल्याणकारी अगर नहीं है तो फिर एक्यूरेट है, तो ये बात भी तो बोल सकते हैं कि एक्यूरेट है जो चल रहा है वो एक्यूरेट है, तो मना उस बात से उसको स्वीकारना है। कई बार बाबा कहते हैं ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, तो ये बात है। कोई कोई पूछते हैं कि बाबा हलवा ही क्यों बोलते हैं, रसमलाई क्यों नहीं बोला गुलाब जामुन क्यों नहीं बोला, हलवाई वो तो ये मुहावरे है ना। तो मैंने ये कहने का भावार्थ ये है कि कुछ भी हो जाए, ऐसा मैंने जाकर के हलवा बना के खाने की बात नहीं है, लेकिन समझ की बात है कि ठीक है एक्सेप्ट कर लेना है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। वो तो दुखी होंगे ना, वो तो दुखी होंगे। हाँ नहीं, उनको तो जाकर के ये नहीं बोल सकते ना, अगर वो डेड बॉडी वहां पड़ी है, सब रो रहे हैं, और हम जाकर के बोले जो भी हुआ ना कल्याण ही हुआ, अच्छा ही हुआ, ड्रामा एक्यूरेट है, ये तो नहीं बोल सकते हैं। ये तो हम ब्राह्मणों के लिए है, ये समझने के लिए है, समझने के लिए, बोलने के लिए नहीं है। तो उनको दुख, वो रो रहे हैं जोर जोर से, हम जाकर के बोले बाजू में जाकर के कान में बोले कि जो हुआ ना कल्याण हुआ। वो तो फिर वो तो अकल्याण हो जाता है, सचमुच अकल्याण हो जाता है फिर। अनुभव, जितना हम अनुभव करते जाएंगे ना उतना निश्चय बढ़ता जाएगा। जितना अभ्यास, अनुभव के लिए अभ्यास, जितना आप अभ्यास करते जाएंगे, अलग अलग बाबा का ड्रिल है या समान है, बाबा के जो भी ज्ञान है, जितना आप अभ्यास करते जाएंगे उतना फिर नशा चढ़ेगा, फिर परिस्थितियों पर विजय पाते हुए आप दिखाई देता है कि हाँ इससे हो गया है, तो फिर निश्चय बढ़ता है। जितना जितना परिस्थितियों पर विजय पाते जाएंगे, सामना करते जाएंगे, उतना निश्चय बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अभ्यास, जितना अभ्यास करते जाएंगे अनुभव होता जाएगा। तो एक ऐसे बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन, ज्ञान में आए और ज्ञान में चल पड़े थे, 2-3 साल 5 साल हुआ था, तो उनको है ना बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, एकदम रोड पे आ गए थे, एकदम पूरा लॉस हो गया था। और फिर सभी बोलने लगे कि आप ना ब्रह्म कुमारियों के पास गए थे तो बिजनेस ठीक से नहीं किया, तो इसीलिए ऐसा हाल हो गया। वो ब्रह्म कुमारियों के पास जाना छोड़ के पूरा ध्यान बिजनेस में लगाओ तो फिर वो ठीक होगा। तो वो अगर निश्चय नहीं है तो ये मान लेंगे कि हाँ ये ऐसा ही सही है कि मुझे ना बाबा का ज्ञान छोड़ देना चाहिए और ये पूरा बिजनेस में ध्यान लगाना चाहिए। तो लेकिन उस आत्मा के अंदर इतना निश्चय था, बाबा के बारे में इतना निश्चय था, उन्होंने क्या कहा पता है, मैं ना बाबा के पास जाता हूँ, ब्रह्म कुमारी संस्था में जाता हूँ, इसलिए मैं जिंदा हूँ आज। अगर नहीं जाता, मेडिटेशन नहीं करता, तो मैं हार्ट अटैक होकर के मैं मर जाता, क्योंकि फिर इतना बड़ा लॉस होकर के फिर कोई व्यक्ति जिंदा रहे वो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ वो तो है, बाबा संभाल लेता है, लेकिन फिर ये भी है ना कि बाबा के कारण से मैं जिंदा हूं अभी, कि बाबा का ज्ञान अगर नहीं होता, ताकत नहीं होती, सामना करने की शक्ति नहीं होती, तो फिर क्या होता है ना। ये हमेशा ये फीलिंग बना रहे कि बाबा मेरे साथ हैं, कभी फील नहीं करना कि आप अकेले हो, नहीं, बाबा हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरी मदद करने के लिए तैयार है। बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, मुझे यूज करो। यूज करना नहीं आता है ना हमें, कभी कई बार सिर्फ मांगते रहते हैं कि बाबा ये दे दो, शांति दे दो, शक्ति दे दो, अथॉरिटी से, बाबा आपको करना है ये काम, अथॉरिटी से बोल के देखो बाबा ये होना है। ये संबंध है ना हमारा, जहां संबंध है वहां अथॉरिटी है। आपके अगर पिता को बोलेंगे ना कि आपको करना ही पड़ेगा ये काम है ना, तो वहां जहां संबंध है वहां अथॉरिटी है। ऐसे ही बाबा के ऊपर वो अथॉरिटी, जितना अगर उनके कहे अनुसार हम चलते जाएंगे ना तो फिर हमारी अथॉरिटी बनेगी, समझी बात। अगर हम फरमान बरदार होंगे बाबा के श्रीमत पर, जितना हम चलते जाएंगे, बाबा भी बंदा हुआ है मेरी मदद करने के लिए, अगर बाबा के कहे अनुसार मैं चलू ही नहीं, मैं करूं ही नहीं कुछ भी, फिर मैं को बोलू कि मैं करना पड़ेगा आपको, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो संबंध बना ही नहीं ना। मैं उनकी बात नहीं सुनूं, मैं सोचूं कि मेरी बात वो सुने, ये हो सकता है? हो सकता है कि नहीं ना, कि मैं उनकी बात सुनूं, करती जाऊं, फिर एक बार मैं कहूं करके देखे तो वो जरूर सुनेंगे, जरूर वो ये बात हो जाएगी ना। है ना, तो ये है बात, विश्वास रख करके। वही ना, हाँ हाँ। तो कई बार बाबा को, बाबा के साथ लड़ते हैं है ना, तो हम प्यार से बाबा से लड़े, ऐसे नहीं कि हक से। कई बार ना रूठ भी जाते हैं बाबा से, रूठना नहीं है बाबा के साथ, है ना। बाबा को के साथ रूठेंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना। बाबा कहीं मुरलियों में ये भी कहते हैं कि बाबा से कभी नहीं रूठना का, बाबा के साथ रूठने से क्या होगा, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना जैसा हो जाता है। बाबा मनाने आते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत रूटा रूसी ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर रूठ करके बाबा के घर आना छोड़ दे, ये सब नहीं करना है, रूठना भी नहीं है, ये भी कल्याणकारी है। क्यों कल्याणकारी है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि शायद आप पहले आते तो फिर बाबा के ज्ञान में नहीं चलते, क्योंकि आदि के समय में ये जो नियम थे ना बहुत सख्त थे, बहुत कड़े थे। तो अभी अभी थोड़ा बहुत जैसे ना रिलैक्स हुआ है, तो इसलिए जिस समय पर आप आए हो वो एक्यूरेट है ना। तो पहले आते तो शायद तो बहुत आत्माएं आई बाबा के पास, और कराची में भी बहुत सारी भाई बहने थी, वो भी चले गए, है ना। ऐसा नहीं कि सभी जो आए बाबा के पास वो रह गए, ऐसा भी नहीं है ना, आके चले भी गए, जो कमजोर थे आत्माएं तो चली गई। तो अलग अलग ड्रामा का प्लान अलग था, उनका रोल अलग था। चलो कमजोरी नहीं, एटलीस्ट ये कह सकते उनका रोल अलग है, रोल अलग था। तो आपका रोल ये है, तो शायद आपके परिवार वालों का कल्याण होना था आपके द्वारा, है ना, आपके जो आपके पास आसपास जो आत्माएं हैं उनका कल्याण होना था, तो इसलिए वो भी एक्यूरेट है ना, वो भी एक्यूरेट है।